مرتن. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं मनोज पाठक।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी वीबीजी राम जी पेश किया। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है। आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर मंथन करने की कोशिश करेंगे कि यह किस रूप में विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वीबीजी राम जी यानी मनरेगा का नया विकल्प। हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद मनोज जी।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि वीबीजी राम जी क्या है और मनरेगा का स्थान लाने का औचित्य मुख्य रूप से क्या समझती हैं आप?
देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपने अभी अपनी शुरुआती रिमार्क्स में कही मनोज जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये 2 दशक पुराना एक एक्ट है जो मनरेगा है। बहुत ही एक अपने आप में क्रांतिकारी कदम था जब ये लाया गया था, लेकिन तब से अब तक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बदलाव हो चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि पावर्टी जो है वो बहुत डिप हो चुकी है। पहले अगर 2011-12 का फिगर देखेंगे, कभी करीब 25% पावर्टी रेट था, जो अब 4% पे घट के आ गया है। क्योंकि हुआ क्या है कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की इनकम्स थोड़ी बेटर हुई है, फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो बढ़ा है, ना सिर्फ शहरी इलाकों में, रूरल इकोनॉमी में भी बहुत बदलाव आया है। ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, सरकार की बहुत सारी एस्टिमेशंस और एनएसएसओ का डेटा हमें बताता रहा है। तो अब ये जो सोशल प्रोटेक्शन बेहतर हुई है और कनेक्टिविटी और डीपर डिजिटल एक्सेस जिसको हम कहते हैं हुआ है, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने का तरीका है उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, तो इन सब के मद्देनजर ऐसा माना गया सरकार में। मंथन इस पर बहुत देर से चल रहा था, ये विधेयक अभी आया है लेकिन इस पर मंथन करीब 2-4 साल से चल रहा था कि इसमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस की अब जरूरत है। इन्हीं चेंजेस को लाने के लिए अब ये नया मसौदा तैयार किया गया है। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ये हैं, एक तो इसका नाम बदला गया है। नाम बदलने के पीछे आज शिवराज सिंह चौहान जो ग्रामीण अफेयर्स के मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हम महात्मा गांधी के आइडियल्स को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक आइडियल ग्राम की कल्पना की थी, परिकल्पना की थी, जो ये विधेयक करने की कोशिश करेगा। तो इसमें प्रावधान सबसे बड़ा ये है कि 100 दिन की गारंटी के बजाय 125 दिन की गारंटी है साल भर में। दूसरा ये है कि जो वेजेस हैं मनरेगा में, जो वेजेस थे वो 205 थे पर डे, अब ये प्रावधान है कि उनको बढ़ाकर 250 किया जाए, तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा जो परिवर्तन है मनोज जी वो ये है कि स्टेट्स को अकाउंटेबल करने के लिए, अभी क्या था जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें 90% जो पैसा है वो सेंटर से जा रहा था, ये एक फुली, एक तरीके से आप समझिए सेंट्रली फंडेड स्कीम थी। तो उसमें ऐसा पाया गया, बहुत सी ऐसी एस्टिमेशंस हुई जिसमें ये पाया गया कि स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो अब क्या है, 60-40 स्टैंडर्ड रेशो कर दिया गया है सेंटर और स्टेट की भागीदारी का। ये बहुत बड़ा बदलाव है, लिटरली आप समझिए कि 100% सेंट्रल फंडिंग से अब 60-40 रेशो आ गया, जो 60% अब सेंट्रल फंडिंग रह जाएगी। हालांकि हिमालयन स्टेट्स जो हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसका अनुपात 90-10 रहेगा, 90% सेंट्रल फंडिंग रहेगी, और जो यूटीज लेजिस्लेचर के बिना है उनमें 100% सेंट्रल फंडिंग अभी भी प्रावधान किया गया है इस बिल के दौरान। तो ये तो मसौदा है मोटा मोटा। इस मसौदे में बहुत बड़ा एक फंडामेंटल चेंज और किया गया है मनोज जी, जो समझना जरूरी है स्टेट्स की भागीदारी के संदर्भ में। वो चेंज ये है कि एग्जिस्टिंग स्कीम जो मनरेगा है, एग्जिस्टिंग लॉ जो है, उसमें डिमांड बेस्ड एलोकेशन हो रही थी बजट की, कि स्टेट्स डिमांड रेज करेंगे और फिर सेंटर से बजटिंग आएगी, और सिमिलरली जो जॉब भी मिल रहा था वो डिमांड बेस्ड लोगों को मिल रहा था कि चलिए यहाँ एक तालाब खोदने का प्रावधान कर देते हैं, आप कुछ लोगों को जॉब मिल जाएगा, लोग काम मांगते थे तो उनको एक किस्म से काम मिल जाता था। लेकिन अब इस नए मसौदे में प्रावधान ये है कि नॉर्मेटिव एलोकेशन होगी। नॉर्मेटिव फंडिंग जो है वो एक इकोनॉमी में वो एक रैशनल फंडिंग का तरीका है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे कि पहले हम ग्राम पंचायत के लेवल पर ये देखें तो सही कि हमारे ग्राम में किस चीज की जरूरत है
जी।
हो सकता है वहाँ तालाब ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो तो एक एक्स्ट्रा तालाब बनाने की कोई जरूरत नहीं हो, तो क्या जरूरत है वहाँ पे। अब इस मसौदे में क्या किया गया है कि सारे ग्राम पंचायतों के लेवल पर एक प्लान बनेगा जिसके बेसिस पर यह डिटरमिन होगा कि किसी पर्टिकुलर गांव में किस चीज के काम की जरूरत है, और इसको लिंक कर दिया गया है पीएम गति शक्ति के साथ। इस लिंकेज से क्या होगा मनोज जी, स्पेशल डेटा अवेलेबल हो जाएगा जो सैटेलाइट बेस्ड है कि कौन से गांव में किस चीज की जरूरत है। शायद किसी गांव में सड़क की जरूरत हो, शायद किसी गांव में कुएं की जरूरत हो, कहीं और सरोवर की जरूरत हो, तो जरूरत के बेसिस पर ये जो चार और प्लस चार वर्टिकल्स तय कर दिए गए हैं जो पहले नहीं था, इन चार वर्टिकल्स में प्रावधान होगा कामों का, और स्टेट डिमांड रेज करेंगी, उस बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा, और आउटकम बेस्ड भी डिलीवरी जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। उसमें क्या होता है मनोज जी, जो दिखाई नहीं देता बेनिफिट वो लॉन्ग टर्म होता है। जब ट्रांसपेरेंट फंडिंग होगी, जब ट्रांसपेरेंट डिलीवरी होगी, प्रॉपर ऑडिटिंग होगी फंड्स की, तो बहुत सारा पैसा बचेगा जो अभी सिस्टम में इधर उधर गुम हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से कितने लोगों को पैसा उनके अकाउंट्स में मिल रहा है। सिमिलरली लीकेजेस को प्रिवेंट करेगा, उससे स्टेट्स का फायदा होगा।
यहाँ अदिति जी ये समझना चाहेंगे कि आपने बड़े मार्के की बात कही कि पंचायत स्तर पर कह लें कि काम की निगरानी अधिक अच्छी हो सकेगी इस संपूर्ण प्रक्रिया में। यहाँ क्या ग्राम पंचायत को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी डिमांड खुद रेज करें और राज्य सरकार उस आधार पर अपनी डिमांड आगे बढ़ाए?
आपने जैसा कहा कि बॉटम अप अप्रोच होने वाली है, तो बॉटम अप अप्रोच में ये होने वाला है कि जो मॉनिटरिंग की और डिसीजन मेकिंग की पावर है वो ग्राम पंचायत को ही मिलने वाली है। तो वही बताएंगे कि हमें क्या जरूरत है, वही मॉनिटर करेंगे काम को।
यानी ये बड़ा बदलाव होगा कि ग्राम पंचायत अपने यहाँ की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में उनकी आएगी। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि नए विधेयक में पुराने विधेयक से मजदूरों को, है तो ये अकुशल मजदूरों के लिए, लेकिन क्या इसमें कोई वेतन भुगतान को लेकर साप्ताहिक मासिक या इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है क्या?
देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान इस बिल में नया किया गया है, पुराने स्ट्रक्चर से डेली वेजेस होंगे
जी,
तो उसमें कोई मतलब नहीं है, उनके अकाउंट्स में पैसा अभी भी जा रहा है, बाद में भी जाएगा, तो वो सिस्टम वैसे ही चलेगा। लेकिन जो नया प्रावधान इस बिल में किया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने सपोज एप्लीकेशन भरी ग्राम पंचायत को और ग्राम पंचायत ने डिमांड रेज की कि मुझे आज की डेट में नौकरी की जरूरत है, काम की जरूरत है, अगर 15 दिन में मेरी एप्लीकेशन पर मुझे काम नहीं दिया गया तो ये राज्य की जिम्मेदारी होगी मनोज जी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उस व्यक्ति को दें। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि स्टेट को नोटिफाई करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन स्टेट में जो मिनिमम वेज का प्रावधान है उससे कम, जो मिनिमम वेजेस है स्टेट की उससे कम ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा जो आपने कहा इम्पोर्टेंट चीज, वो आपने ये पूछा कि फार्मर्स और फार्म लेबरर्स के लिए ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एक नया प्रोविजन लेके आई है सरकार जो ये कह रहे हैं कि 300 दिन जो साल के हम 300 दिन लेके चलें, जो ब्रॉड मसौदा है इस बिल का, उन 300 दिनों में आपको 125 दिन गारंटीड रोजगार देने हैं। उन्हीं 300 दिनों में 60 दिन ऐसे होने चाहिए जब आप कोई काम ना दें, मतलब मजदूरों को आप कोई काम ना दें, क्योंकि ये सीजन ऐसे होने चाहिए जहां एग्रीकल्चर सोइंग और हार्वेस्टिंग के सीजन हो। अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट मनरेगा में मनोज जी, बहुत सारे लोग पीछे खेतों में रह जाते हैं या अपने घर चले जाते हैं मनरेगा के काम करने, तो हार्वेस्टिंग और सोइंग के लिए एग्रीकल्चर लेबर की बहुत सारे राज्यों को कमी महसूस होती है। तो ये दो बहुत बड़े बदलाव हैं एग्जिस्टिंग बिल से। और एक और चीज जो सरकार ने ध्यान में रखी है इस बिल को लाते टाइम, 2024 और 25 में एक स्टडी कमीशन हुई थी ऑडिट करने के लिए मनरेगा की, और ये पाया गया था मनोज जी कि करीब 200 करोड़ पूरे देश में हर राज्य को मिला के ऐसा फंड था जो मिस अप्रोप्रिएट हुआ था मनरेगा के अंदर
जी।
हुआ क्या था कि बहुत सारे जगहों में काम दिखा दिए गए थे लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुए थे ग्राउंड में, कहीं कहीं हाथ का लेबर दिखा दिया गया था लेकिन मशीन से काम हुआ था, तो ये सब मिला के 200 करोड़ का लॉस हुआ था। प्लस ये भी पाया गया कि सिर्फ 7% साथ ऐसे हाउस होल्ड थे जहाँ पे 100 दिन का वर्क कम्प्लीट हुआ था। ये कोविड के बाद का जो इम्पोर्टेंट एक एस्टिमेशन है
जी,
जो सरकार ने ध्यान में रखा नया लॉ बनाते टाइम, ये इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं।
यहाँ पर अदिति जी ये समझना चाहेंगे कि उद्योग जगत से कई बार आवाज आई थी, छिटपुट भी और कह लें कि समूह के रूप में, कि मनरेगा से काम करने वाले मजदूरों की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। नया जो कानून बना है उसमें 125 दिन की नियमित जो रोजगार अवधि मिलेगी, उससे उद्योग जगत की जो पुरानी शिकायत रही थी उसको हम किस रूप में संभाल पाएंगे या बदल पाएंगे या पूरा कर पाएंगे, क्या लग रहा है आपको?
जैसा कि हमने कहा कि 60 दिन नो वर्क मैंडेटरी कर दिया गया है, हर राज्य को अपना एक फ्रीडम होगा डिसाइड करने का कि ये कौन से 60 दिन होंगे जब आप मनरेगा के काम लोगों को नहीं देंगे। तो आप अपने अपने राज्य के इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने अपने राज्य की औद्योगिक कैपेसिटी के हिसाब से, कुछ राज्य एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है जैसे कि आप पंजाब और हरियाणा ले लीजिए, वो पूरे ही कृषि प्रधान राज्य हैं, तो वहां पे एग्रीकल्चर लेबर के लिए बहुत जरूरत रहती है और मनरेगा में अगर लेबर चली जाए तो खेतों के लिए लेबर बचती नहीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये नो वर्क पीरियड 60 दिन का तय किया गया है। और ये 60 दिन जरूरी नहीं एक साथ हो, ये साल में कभी भी हो सकते हैं, मतलब एग्रीगेट नहीं है, ये अलग अलग वक्त पे हो सकते हैं।
यानी ये सुविधा रहेगी राज्य सरकार को कि अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए वो 60 दिन तय करे, किस्तों में भी तय कर सकती है, लगातार भी तय कर सकती है, ये राज्य का विषय होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि डीबीटी के लागू होने से बड़े पैमाने पर लीकेज रोकने की सफलता हमने पाई, ये कई अध्ययन में भी आया, जो काम करने वाले हैं उनके खाते में धन पहुंच रहा है वहां भी बातें स्पष्ट होकर आई। जो नए प्रावधान अब आएंगे उसमें काम के स्तर पर, काम की मॉनिटरिंग के लिए, वहां जो लीकेज हो जाया करती थी कि कागजों पर तालाब खुदा और कागजों पर ही साल भर के भीतर वो खराब हो गया और फिर वो भरा भी गया, उस तरह की जो लापरवाहियां या कह लें कि काम में जो हेरा फेरी होती थी वहां पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान किया गया है? यहाँ
देखिए, वही जो पहले हम अभी बात कर रहे थे कि ग्राम पंचायत को ही सारा का सारा दारोमदार दे दिया गया है, वही तय करेंगे, वही मॉनिटर करेंगे, अपने स्तर पर देखेंगे
जी।
तो पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका इस लॉ में रहने वाली है। और ये भी ध्यान में रखना होगा मनोज जी कि पहला जो मसौदा है, जो अभी एग्जिस्ट करता है मनरेगा का मसौदा, उसमें तय है काम, लेकिन ब्रॉड सेगमेंट है कि आप कोई भी काम करवा सकते हैं, आप सड़क बनवा लीजिए, आप कुआं खुदवा लीजिए, तालाब बनवा लीजिए। लेकिन इस नए बिल में ये प्रावधान किया गया है कि 4 बड़े सेगमेंट्स तय कर दिए गए हैं, ये पहले बिल में प्रावधान नहीं था
जी।
अब ये जो 4 बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें मनरेगा का काम दिया जाएगा मजदूरों को, वो क्या है? सबसे पहले तो जल संरक्षण के काम है, उसमें कुछ भी आ सकता है
जी।
दूसरा है कि ग्रामीण, जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कह लीजिए उसको, या अपना कोई फूड ग्रेन स्टोरेज, या अनाज आया है मंडी तक जाने से पहले आपने उसको स्टोर करना है तो स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करनी है, वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। लाइवलीहुड रिलेटेड, आजीविका रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। और चौथा है जितने भी स्पेशल काम है डिजास्टर रिलेटेड, तो जितने भी नुकसान होते हैं डिजास्टर को लेके, उसके जो रिपेयर के काम है वो सब अब इस नए बिल के तहत मनरेगा के काम माने जाएंगे।
श्रोताओं की ओर से अदिति जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इस विधेयक जो कानून का रूप लेने वाला है उसके विविध पक्षों पर बड़े सधे हुए अंदाज में जानकारियां दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मनोज।
अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
मंथन।